بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں جس میں رمضان المبارک کی خصوصی تیاری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خطبہ جسے بعد میں خطبہ شعبانیہ سے تعبیر کیا گیا صادر ہوا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے, اور اس خطبے کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعمالی عیون و اخبار الرضا اور فضائل الاشہر الثلاثہ میں نقل کیا ہے. جہاں تک عیون و اخبار الرضا کا تعلق ہے تو اس میں اس خطبے کی سند ضعیف ہے, چونکہ اس میں راوی آتے ہیں ابن ابی نقاش, ان کا نام ہے غالباً, کہ ان کے وہ مجہول راوی ہیں جن کی توثیق کتب میں وارد ابن نقاش, ابن نقاش نام ہے, ان کی توثیق وارد نہیں ہوئی. لیکن جو امالی شیخ صدوق امالی میں جو روایت نقل ہے اس کو اکثر نے معتبر قرار دیا ہے. البتہ یہ سند کے اعتبار سے بحث ہے, آیا یہ خطبہ واقعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا یا نہیں. والا اس کے معانی ہمیں یہ ضرور خبر دیتے ہیں کہ بلا شک و شبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ یا معصوم ہستی کے علاوہ کسی سے صادر نہیں ہو سکتا. اس کے معنی ہمیں بتاتے ہیں, یعنی ہمارے پاس متن کے اندر قرائن ایسے موجود ہیں جس سے ہمیں یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خطبہ ہے. لیکن ایک سندی بحث بھی ہوتی ہے, اور اس سندی بحث میں صرف یہ دیکھنا مطلوب ہوتا ہے کہ آیا یہ متن, یہ مضمون خبر, یہ مضمون حدیث, آیا یہ صادر بھی ہوا یا نہیں ہوا. لہذا سند کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے. البتہ فقط سند واحد ذریعہ نہیں ہے, جیسے بعض اہل حدیث یا سلفی حضرات ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ سند کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ متن یہ صادر ہوا یا نہیں ہوا. یعنی ان کی نظر میں تواتر اور خبر واحد جو صحیح سند ہوں یا جن کے ساتھ قرائن ہوں وہ ذرائع ہیں کہ جس سے صدور کا پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ صادر جو چیز ہوئی ہے اس پہ غور و فکر بعد کا مرحلہ ہے. پہلے ثابت تو کر دیا جائے کہ یہ صادر بھی ہوا یا نہیں ہوا امام معصوم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہاں پہ ہم اگر سند کے اعتبار سے بھی دیکھیں, عیون و اخبار الرضا کی روایت جو ہے وہ ابن نقاش کے پہلو سے ضعیف ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ مجہول الحال راوی ہیں. یعنی ان کا تذکرہ ہی اصلاً رجال کی کتب میں وارد نہیں ہوا ہے. اگر رجال کی کتب میں تذکرہ وارد نہ ہو اسے محمل راوی بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے. لیکن امالی شیخ صدوق میں راوی وارد ہوئے ہیں, اور ان راویوں کے نام آپ کی خدمت میں دوبارہ تیزی سے پڑھ دیے جائیں کہ پہلے ہیں محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ, کہ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں, اور مشائخ شیخ صدوق ہونے کی وجہ سے یہ ثقہ قرار پاتے ہیں اکثر کے نزدیک, یا رحمہ اللہ کہ اگر اس کی دلالت قبول کر لیا جائے کہ رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کی دلالت ایک بندے کی وساقت کے اوپر دلالت کرتی ہے تو یہ کلمہ بھی کافی ہوگا. وہ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد الحمدانی سے کہ یہ ثقہ ہیں. وہ نقل کرتے ہیں علی بن حسن بن فضال سے. احمد بن محمد الحمدانی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جارودیہ فرقے زیدیہ فرقے کی ایک شاخ ہے, اس سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی مسلمان ہیں بلا شک و شبہ, جھوٹ نہیں بولتے تھے, اس طور پہ وساقت ان کے بارے میں معلوم ہے, لیکن مذہب کے اعتبار سے زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے. علی بن حسن بن فضال یہ فتحی فرقے سے تعلق رکھتے تھے, امام صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے عبداللہ افتح ان سے ایک فرقہ چلا, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے مقابلے میں عبداللہ افتح کی امامت کا دعویٰ کیا گیا, تو جو عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہوئے وہ فتحی مذہب کہلاتے ہیں. علی بن حسن بن فضال خود جھوٹ نہیں بولتے, وساقت ان کی ثابت ہے, लेकिन मज़हब के अतबार से वो मज़हब हक़ के ऊपर नहीं थे। वो अपने वालिद हसन बिन फद्दाल से नकल करते हैं, और हसन बिन फद्दाल भी फतही थे लेकिन बाद में उन्होंने रुजू किया और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल हो गए। वो नकल करते हैं इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से, यानी ये रवायत हम तक पहुंची है हकीकत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम सादिक़, उन्होंने इमाम बाकिर, उन्होंने इमाम सज्जाद, इमाम सज्जाद इमाम हुसैन व इमाम हुसैन इमाम अली अलैहिस्सलाम उनसे नकल किया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको नकल किया, और ये भी आपकी खिदमत में बयान किया जा चुका है कि अमालिय शेख सदूक, क्योंकि ये सबसे कदीम तरीन हमारे पास अमाली में किताबें हैं। हमारे पास तीन अमाली मारूफ़ हैं, अमालिय शेख सदूक, फिर अमालिय शेख मुफीद और अमालिय शेख तूसी। अमाली इमला से है, अपने तुल्लाब को इमला कराया करते थे ये मुहद्दिसीन, तो वो जो इमला उन्होंने कराई होती थी उसको फिर ख़ुद उस्ताद के ज़ेर नज़र एक किताबी शक्ल देख के उसे मंजर आम पे लाया जाता था, जिसकी तौसीक उस्ताद किया करते थे। लिहाजा उस्ताद वो अपने शागिर्दों को हदीसों की सनद समेत अपना तरीक बयान करते हुए इमला कराया करते थे, और तब हर शय की इजाज़त उस्ताद से लेना पड़ती थी, आया इमला करें या ना करें ये भी इजाज़त लेना पड़ती थी। समात की इजाज़त तो होती थी कि हदीस सुन ली, लेकिन सुन के आगे नकल करें या ना करें इसकी भी इजाज़त उस दौर में लेना पड़ती थी। अगर इजाज़त उस्ताद ने नहीं दी तो वो बरमला कहता था कि मैंने इसने समात तो किया है लेकिन मुझे इसके हाफ़ज़े पे मसलन एतमाद नहीं है, इसलिए मैंने इसे इजाज़त नहीं दी थी कि ये आगे मेरे तरीक़ से हदीस को बयान करता। इसे कहते हैं इजाज़ा, इजाज़े की नौयतें बनती हैं। ये बात के अदवार में किताबें नशर हो जाने की वजह से और किताबों के मोहकम तबाआत आने की वजह से फिर ये इजाज़े का सिलसिला ख़त्म हो गया, वइला ये इजाज़े का सिलसिला आज से 100 साल तक कायम दायम था। लेकिन किताबें फिर बड़े पैमाने पर नशर हुईं, असल नुस्खे महफूज कर लिए गए लाइब्रेरियों में, इसलिए फिर ये सिलसिला आस्ता आस्ता इजाज़े का ख़त्म हो गया। वइला समात की इजाज़त लेनी पड़ती थी, इमला करने की उसकी भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, फिर इमला करके आगे नकल करने की उसकी भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, हत्ता कि इसकी भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। उस्ताद के पास अपना नुस्खा है जो उन्होंने लिखा है, आया मैं इस नुस्खे से नकल करके आगे पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ। ये सारा का सारा इस वजह से था ताकि हदीस का तहफ़ किया जा सके, उसमें कोई तहरीफ ना की जा सके, उसमें कोई अपनी तरफ से चीज़ें ना डाल सके। लिहाजा ये मज़बूत सिलसिला फिर हदीस का आप जैसे किताबों में देखते हैं, और शवाहिद भी हमें मिल जाते हैं कि एक ही रवायत है वो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने नकल की है और उनके शागिर्दों ने नकल की है, लेकिन अल्फाज का कोई आगे पीछे हेर फेर नहीं है। हाँ अलबत्ता छोटे मोटे अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, वाव नहीं है, मिन नहीं है, अलिफ का इजाफा हो गया है, ये बात समझ आती है कि लिखते हुए ये काम हो सकता है, क्योंकि उस वक्त प्रूफ रीडिंग करके कटिंग तो नहीं की जा सकती थी, यानी आज का दौर नहीं था। तो शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह वो इमला कराया करते थे, और इन्होंने ये किताब जो अमाली है ये उनकी जवानी की किताब है, और ईरान के अंदर ही क्योंकि रई से इनका ताल्लुक था, कुछ उन्होंने इमला कराई है रई में अपने शहर जो आज के दौर में तेहरान कहलाता है। तेहरान का अब एक महल्ला बन गया रई, वइला उस दौर में एक इलाका बड़ा शुमार होता था, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक वहाँ पे उन्होंने इमला बास्तुल्लाह को कराई, और अमूमन वह दिन रखते थे मंगल का और जुमे का, जैसा कि हदीसों के ज़ैल में हमें अंदाज़ा हो जाता है मंगल का दिन रखते थे या जुमे का दिन रखते थे, और इस तरह से ये खुतबा हम तक पहुँचा कि इस ये 20 नंबर मजलिस, यानी हर दर्स का इनवान जिसमें वो कराते थे उसका इनवान वो मजलिस करते थे, और एक दिन में 2 मजलिसें बरपा किया करते थे। अमाली से यह अंदाज़ा होता है एक दिन में 2 मजलिसें बरपा करते और एक ही मजलिस में कई हदीस सनद समेत लिखवा देते। लिहाजा आप हर सनद में देखेंगे तो इब्तदा में शेख सदूक का नाम होगा, इससे पता लगता है कि उनके शागिर्द ने ये इमला की है। या अगर बाज़ जगहों पे नहीं भी है, यानी पहली हदीस में जो पहली हदीस होगी उसमें उस्ताद का नाम होगा, बकिया में होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें भी देखें, ये मजलिस 20 नंबर मजलिस है, मंगल वाले दिन है, माह मुबारक रमज़ान में 4 दिन बाकी थे और 367 हिजरी में, 367 हिजरी में शेख सद्दूक ने ये अपने तुल्लाब को लिखवाया। आगाज़ में पहली हदीस के आगाज़ कैसे है, हद्दसना शेखुल फ़की अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन मूसा बिन बाबुआ अल-कुमी रहमहुल्लाह, यानी ये रहमहुल्लाह बाद के नुस्खों में इजाफ़ा हुआ, तब वो ज़िंदा थे तो तब, क्योंकि रहमहुल्लाह अमूमन जो मरहूम हो जाए उसके लिए होता है। तो आपने देखा आगाज़ में पहली हदीस में, पूरी अमाली में पहली हदीस में शेख सद्दूक का कामिल नाम है, मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन मूसा बिन बाबुआ, लेकिन बाद की हदीसों में इस तरह नहीं है, क्योंकि पहली जो मजलिस होती थी, एक मजलिस में जो रवायतें लिखवाई हैं तो पहली मजलिस में उन्होंने ये बातें सारी की सारी उसमें नोट की जाती हैं और फिर तकरार आगे नहीं किया जाता। ये चीज़ इसलिए भी अहमियत की हामिल है, मुमकिन है कि हमारे यहाँ आज के दौर में क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि इन चीज़ों को अहमियत का हामिल नहीं समझा जाता। वाइल्ला कवायद हदीस व इल्म मबानी इल्म रिजालिया के बग़ैर हदीसें लेना ये गलत काम है, कवायद के बग़ैर हदीसें नहीं ले सकते। इसलिए जो फ़र्द इसे संजीदा नहीं समझता, इसका ये मतलब है कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है, और अगर उसे बाहर फैलाता है बग़ैर कवायद के तो फिर मकतब का भी नुकसान कर रहा है। इसलिए अहादीस मुबारक व मबानी रिजालिया व कवायद हदीस की रोशनी में, यानी आज ताजुब और बात है कि एक दीनदार को भी मुमकिन है कि अमाली का पता ही ना हो, अमाली कहते किसे हैं, वैसे वो इमाम आइमा अलैहिस्सलाम की अहादीस को पढ़ने वाला, उससे ताल्लुक़ रखने वाला है, लेकिन उसे अमाली का लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता। इसलिए ये ख़ुद एक चीज़ कभी चीज़ बन जाती है, ख़ुसूसन तुलाब अजीज़ के लिए, कि उन्हें अगर अमाली लफ्ज़ का पता ही नहीं है, मुस्तद किसे कहते नहीं मालूम, मुस्तदरक किसे कहते हैं इसका इल्म नहीं है, मजामी हदीसिया का अगर इल्म ना हो तो इसका क्या ताल्लुक रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से कैसे कायम होगा। लिहाजा इसका एहतमाम ज़ाहिर का हमें हतमन करना चाहिए। आए अब हम खुतबे की तरफ। अमाली का आपने एक मुख्तसर तारुफ देखा, बकिया इंशाल्लाह किसी और मौरिद में अमाली शेख सद्दूक का तारुफ आपकी खिदमत में कराया जाएगा। तीनों अमाली का उर्दू तर्जमा मौजूद है, लिहाजा उर्दू तर्जमों से भी इस्तफादा किया जा सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान एक दिन तशरीफ़ लाए, ख़तबना ज़ात यौमिन, एक दिन खुतबा इरशाद फरमाया। अब ये कौन सा दिन था इसका तायुन नहीं है, मुमकिन है कि ये 21-22 शाबान का हो, मुमकिन है कि आखिरी जो जुमा आया हो या हफ्ता आया हो आखिरी हफ्ते का हो, लेकिन ये पता है कि आखिरी अय्याम मुबारक का है, शाबान के आखिरी दिनों का है, लेकिन कौन सा दिन है ये नहीं मालूम। 21-22 शाबान भी हो सकती है, 25-26 भी हो सकती है, या बाद की भी। बाज़ ने यह भी कहा है कि 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, इस तरह से एक एहतमाल है, लेकिन इधर मस्कूर नहीं है कि कौन सा खसूसी तौर पे कौन सा शाबान का ये दिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम अगर इस खुतबे को देखें 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये खुतबा अलबत्ता इस तरफ तवज्जो रहे, इब्ने उकदा ने भी ज़िक्र किया है कि जैसा कि ये मैसेज में आपने देखा हो कि मैंने उसकी मालूमात आपको इरसाल की थी, कि इब्ने उकदा वो गालिबन 322 या इस तरह हिजरी में उनकी वफ़ात है, शेख सद्दूक से पहले के हैं, और उन्होंने सनद में डायरेक्ट इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम या उनसे पहले अली बिन हसन बिन फ़ज़ाल से उसे नकल किया है। लिहाजा ये खुतबा अहले सुन्नत कुतुब में भी आया है, लेकिन ज़ईफ़ असानीद के साथ अहले सुन्नत में आया, थोड़े से मानी के तब्दीली के साथ, लेकिन अहली सुन्नत कुतुब में आने की वजह से थोड़ा एतमाद और एतबार और इंसान का बढ़ जाता है। आएँ अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया, फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नहु कद अकबला इलैकुम शहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ महीना देखो कौन सा बढ़ रहा है, अल्लाह का महीना बढ़ते हुए आ रहा है। हमने इस खुतबे को 4 हिस्सों में तकसीम किया, वो पहले मैं तकसीम बयान कर दूँ ताकि खुतबे को याद करना आसान हो, इसे हमें अच्छे तरीके से जहन नशीन करना चाहिए, जो भी सुने इसके कलिमात को याद करें, हिफ्ज करने की कोशिश करें। वाकई ये एक नूर है इंसान की ज़िंदगी में और एक बहुत बड़ी इंसानी ज़िंदगी में बरकत है। पहला हिस्सा है जिसमें माह मुबारक रमज़ान का तारुफ कराया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी तुम ये अंदाज़ा लगाओ कि किस कदर बड़ी अल्लाह ताला की रहमत और नेमत आ रही है। यानी हमारे पास मुमकिन है अल्फाज सारे अधूरे ही हों, सारे के सारे अल्फाज अधूरे होंगे, लेकिन आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पढ़ेंगे तो वहाँ वाकई इंसान ताज्जुब और हैरत में गिरफ़्तार हो जाता है कि इस कदर अज़मत का हामिल महीना आ रहा है। बाल्फाज दीगर, ये जो पहला तारुफ है माह मुबारक रमज़ान का, वो इसलिए है कि इस कदर अजीम चीज़ आ रही है कि तुम उसकी तैयारी करो। लिहाजा जिस तरह एक बहुत बड़े मेहमान का इस्तकबाल करना होता है, मसलन आज रहबर मुअज़्ज़म हमारे मुल्क में आएँ या हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, तो हम कितना बड़ा इस्तकबाल करें कि उनका आने आमद से पहले। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आएँ, वो तो पूरा जहान उनका मुंतज़िर और इस्तकबाल करने के लिए आमादगी दिखाएगा। इसी तरह शाहरुल्लाह आ रहा है तो उसका इस्तकबाल की तरफ उभारा जा रहा है कि अभी आया नहीं है। मज़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी रूटीन लाइफ में गिरफ़्तार हैं, मुई खा पी के सो गए, घर बार के काम किए, अचानक पता लगा कल पहला रोज़ा है, कहेंगे अच्छा ठीक है पहला रोज़ा तो ठीक है रख लेंगे। ये बेमारफती है माह मुबारक रमज़ान के साथ, ये नारवा सलूक है। माह मुबारक रमज़ान वो है कि जिसके ऊपर सलाम भेजा, सलाम अलैका, आप इंशाल्लाह जैसे सईफ़े कामला में कि जिस तरह एक ज़िंदा वजूद के ऊपर सलाम भेजा जाता है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उनके माह मुबारक रमज़ान के कई पहलुओं को उजागर करते हुए सलाम भेजा है। लिहाजा इसका इस्तकबाल करना चाहिए, ये आ रहा है तो कबल इसके कि यह आए पहले ही आमादगी शुरू कर दे। मसलन कैसे आमादगी शुरू करे, रोज़े रखना शुरू कर दे, इबादत की तरफ ज़्यादा मेलान पैदा करे, अपने औकात को मुनज़्ज़म कर ले। मुमकिन है पूरे साल में उसने छुट्टियाँ ना ली हों, इन अय्याम के लिए छुट्टियाँ लेने के लिए प्लान बना ले कि माह मुबारक रमज़ान मेरा ठीक गुजरना चाहिए। कोई मालियात को अपना मुनज़्ज़म करे, दीगर नए कामों को अंजाम देने के लिए मुनज़्ज़म करे। इस्तकबाल होना चाहिए माह मुबारक रमज़ान का। लिहाजा पहला हिस्सा इस माना पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा यह है कि कौन से काम तुम करो इस माह मुबारक में, उसका तस्करा है। ये बहुत अहम चीज़ है। इंसान अमूमन सोचता है मैं क्या करूँ इस महीने में, मुझे क्या करना चाहिए। माह मुबारक रमज़ान में ख़ुद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप हमें तालीम फरमाएँ कि हम क्या काम करें, आप हमें बताएँ कि हमें कैसे ये महीना गुजारना चाहिए। तीसरा हिस्सा इस खुतबे का आमाल का रोज़े क़्यामत, जन्नत और जहन्नम से ताल्लुक़ के ऊपर है। ये बहुत अहमियत का हामिल नुक्ता है। यानी इस दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ मादी ज़िंदगी नहीं जी रहे, एक ताल्लुक़ आखरत से आज भी आबाद है। अगर आखरत ना होती तो फिर कैसे ताल्लुक़ कायम होता। आखरत में हिसाब किताब, सज़ा जज़ा, ये नज़रिया बताता है कि आखरत मौजूद भी है अभी और उससे इस जहान का ताल्लुक़ भी है। इंशाल्लाह ये वाली बातें या इस तरह के नुकात आपकी खिदमत में इस तीसरे हिस्से में आएंगे। इंसान इस दुनिया में जो कुछ करता है उसका एक गहरा ताल्लुक आखरत के जहान के साथ है, वो मौजूद है, जन्नत भी मौजूद है, जहन्नम भी मौजूद है। चौथा हिस्सा है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत या एक अफजल तरीन अमल। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इतने अमाल या रसूलुल्लाह आपने जिक्र किए, इनमें सबसे अफजल अमल कौन सा है। मुमकिन है ये एक आम बंदा उधर होता तो ये ज़ीरकीना दिखाता और ये उम्मत को पहुंचाने के लिए, वरना इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास ये इल्म मौजूद है, उम्मत या उधर माशरे में जो लोग मौजूद थे उनके सामने उजागर करने के लिए कि आमाल की तो एक लंबी फहरिस्त या रसूलुल्लाह आपने बयान कर दी, इन तमाम आमाल में सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है। उस अफजल तरीन अमल की निशानदेही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में की और फिर गिरिया फरमाया और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी। इंशाल्लाह ताला हम अगले दर्स में पहले हिस्से को मुतालिया करेंगे कि ये जो महीना आ रहा है ये किस कदर जलीलुल कद्र, शानो मंजलत और अजमत का हामिल है। वसल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद व आलिही ताहिरीन।